नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। दूरसंचार मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन सार्वभौम सेवा दायित्व कोष से किया जाएगा और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क इसका क्रियान्वयन करेगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को संपन्न राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन में इस परियोजना की घोषणा की। आधिकारिक बयान के मुताबिक दूरसंचार मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए संपर्क सुविधा अहम है और देश के हर एक कोने तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 500 दिनों में 25,000 नए मोबाइल टावर लगाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई है। इस सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों ने भी शिरकत की। वाहन निर्माताओं ने डीलरों को होने वाली आपूर्ति सुधारने और त्योहारों का मौसम आने से सितंबर में वाहनों की खुदरा बिक्री 11% बढ़ गई। वाहन डीलरों के संगठन फाडा ने मंगलवार को सितंबर बिक्री के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि पिछले महीने कुल खुदरा बिक्री 14,64,001 इकाइयों की हुई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 13,19,647 इकाई रही थी। फाडा ने कहा कि अक्टूबर के महीने में खुदरा बिक्री की संख्या इससे भी अधिक रहने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान दशहरा और दिवाली के त्यौहार होने से उपभोक्ताओं की मांग अधिक रहने की उम्मीद है। फाडा ने कहा, डीलरों को इस महीने यात्री वाहन खंड में पिछले एक दशक का सबसे अच्छा त्यौहारी मौसम रहने की उम्मीद है। हमें इस महीने बिक्री में और तेजी आने की स्थिति बनती हुई दिख रही है। ट्रैक्टर एवं कुछ तिपहिया वाहनों को छोड़कर बाकी सभी वाहन खंडों ने सितंबर के महीने में बेहतर बिक्री आंकड़े दर्ज किए। यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 10% बढ़कर 2,60,556 इकाई, जबकि सितंबर 2021 में 2,37,502 वाहन बिके थे। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने एक बयान में कहा, सेमीकंडक्टर की आपूर्ति सुधरने से कारों की उपलब्धता बेहतर होने और आधुनिक खूबियों से लैस नए मॉडलों की पेशकश से उपभोक्ता अपना पसंदीदा वाहन खरीदने के लिए डीलरों के पास बड़ी संख्या में आए। यात्री वाहन खंड में मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1,03,912 इकाइयों की खुदरा बिक्री की, जबकि हुंडई मोटर इंडिया ने 39,118 और टाटा मोटर्स ने 36,535 इकाइयों की बिक्री की। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को अपनी मानक ब्याज दर में लगातार छठे महीने वृद्धि की, जिससे ये 9 महीनों के उच्च स्तर 2.6% पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने नकदी दर में 0.25% की वृद्धि की, जो विश्लेषकों की उम्मीदों से कम है। विश्लेषकों ने 0.50% वृद्धि की संभावना जताई थी। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक पिछले 4 बार से ब्याज दर में 0.5 से 0.5% की वृद्धि करता रहा है। उसके पहले मई में केंद्रीय बैंक ने 0.25% की वृद्धि की थी, जो अगस्त 2013 के बाद की पहली बढ़ोतरी थी। केंद्रीय बैंक के गवर्नर फिलिप लोव ने कहा कि इस बार ब्याज दर में कम वृद्धि करने का ये मतलब है कि नकदी दर सीमित अवधि में खासी बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि आगामी वृद्धि का फैसला मुद्रास्फीति एवं श्रम बाजार के परिदृश्य के आकलन पर निर्भर करेगा। ऑस्ट्रेलिया में मुद्रास्फीति इस समय 6.1% है और दिसंबर तिमाही में इसके 7.75% के स्तर तक पहुँच जाने की संभावना है। वाहन विनिर्माता किया इंडिया ने मंगलवार को कहा कि वो अपनी यूटिलिटी वाहन कारेंस की 44,174 इकाइयों को वापस मंगा रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि एक जिम्मेदार कंपनी होने से उसने इन वाहनों को वापस मंगा कर उनका निरीक्षण करने का फैसला किया है, ताकि एयरबैग का संचालन करने वाले सॉफ्टवेयर में कोई खामी पाए जाने पर उसे सही किया जा सके। किया इंडिया ने कहा कि कारेंस मॉडल की इन इकाइयों को स्वैच्छिक रूप से अधिकृत डीलरों के पास मंगाने का अनुरोध वाहन मालिकों से किया जाएगा, ताकि एयरबैग के कंट्रोल सॉफ्टवेयर में किसी गड़बड़ी को ठीक किया जा सके। किया ने इस साल फरवरी में 6 और 7 सीटों वाले मॉडल कारेंस को बाजार में पेश किया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में दिल्ली के जीएसटी संग्रह में एक साल पहले की तुलना में 6% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई सितंबर 2022 तिमाही में माल एवं सेवा का राजस्व संग्रह 13,417 करोड़ रुपये रहा। अप्रैल जून की तिमाही के कर संग्रह 14,297 करोड़ रुपये की तुलना में ये 880 करोड़ रुपये कम है। इसके बावजूद वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में दिल्ली सरकार का कुल जीएसटी संग्रह 27,714 करोड़ रुपये रहा है, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 28% अधिक है। अधिकारियों ने इसे कोविड महामारी के दुष्प्रभावों में आई कमी और आर्थिक गतिविधियों के तेज होने का संकेत बताया। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीएसटी संग्रह में और वृद्धि होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि इस तिमाही में त्योहारी मौसम रहने से कारोबारी गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कुल 75,800 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान जताया था, जिसमें 47,700 करोड़ रुपए का कर संग्रह भी शामिल है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।